आयुष 2 दिन की आउटिंग करने के बाद घर पहुंचा था। घर जाकर उसे पता चला कि उसके मॉम डैड बाहर गए हुए थे। आहान तो पहले से ही उस घर में नहीं रहता था। खुद को अकेला पाकर आयुष बहुत रेस्टलेस हो रहा था। वो अपने कमरे में आया और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे पैनिक अटैक आ गया। आहान को जैसे ज्यादा गुस्सा आने की बीमारी थी, वैसे ही आयुष अकेला नहीं रह पाता था। ऐसी सिचुएशन में उसके लिए खुद को संभालना मुश्किल हो पा रहा था। आयुष अपने कमरे में बैठे हुए वहीं से जोर से चिल्लाया, प्लीज समबडी हेल्प मी, मुझे अकेला मत छोड़ो, ये लोग मुझे मार देंगे, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। आयुष के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बाहर काम कर रहे हाउस हेल्पिंग स्टाफ दौड़कर उसके कमरे में गए। उन्होंने आयुष को जमीन पर गिरा हुआ पाया और उसने अपनी आंखों को कसके बंद कर रखा था। ऐसे लग रहा था जैसे आयुष उस वक्त किसी को नहीं देखना चाहता था। उनमें से एक ने दूसरे की तरफ देखकर कहा, मुझे इनकी हालत ठीक नहीं लग रही है, सर और मैडम भी यहाँ पर नहीं है, हमें आहान सर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन पहले इन्हें कमरे से बाहर खुली हवा में लेकर चलते हैं, इनके लिए कुछ खाने का पीने के लिए ले आओ, मुझे लगता है इन्होंने काफ़ी टाइम से कुछ खाया नहीं है तब इनकी ऐसी हालत हो गई है, दूसरे हेल्पर ने जवाब दिया। फिर उन दोनों ने मिलकर आयुष को उठाया और उसे बाहर गार्डन एरिया में लेकर गए। एक हाउस हेल्पिंग स्टाफ आयुष के लिए खाना लेने के लिए चला गया, जबकि दूसरा अभी भी उसके पास था। वो आयुष को रिलैक्स करने के लिए बोला, सब ठीक है सर, आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं, मैंने आहान सर को कॉल कर दिया है, वो यहाँ आते ही होंगे। आयुष ने उसकी बात पर हामी भरी और चुपचाप गार्डन के फूलों को देखने लगा। इसके बाद वो हाउस हेल्पर वहाँ से जाने लगा, तभी आयुष ने उसका हाथ पकड़कर कहा, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो वरना वो मुझे मार देंगे। उस आदमी को आयुष की बातें अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहीं पर खड़ा हो गया। वहीं दूसरी तरफ आहान के पास जब कॉल आया था, तब वो चाहत के बगल में सोया हुआ था। उसने अभी भी चाहत को टाइटली हग कर रखा था। कॉल पर आयुष की तबीयत खराब होने का सुनकर आहान ने चाहत को वहीं पर छोड़ा और जल्दी से चेंज करके ओबेरॉय मैंशन जाने के लिए निकल गया। उसके पीछे से चाहत अकेली बिस्तर पर सो रही थी। आहान के जाने के लगभग आधे घंटे बाद चाहत की आंख खुली। उसके पास भी श्रद्धा का कॉल आया था, जिसकी वजह से उसकी नींद टूट गई। कॉल रिसीव करने से पहले चाहत ने अपने बगल में देखा, जहां पर आहान मौजूद नहीं था। चाहत ने श्रद्धा का कॉल रिसीव करके कहा, तुमने मुझे इतनी सुबह कॉल किया है, सब ठीक है ना वहाँ पर, मम्मा की तबीयत, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना श्रद्धा, चाहत ने डरते हुए पूछा। आहान के चक्कर में वो ठीक से अपनी मम्मा से मिल भी नहीं पा रही थी, ऐसे में इतनी सुबह श्रद्धा का कॉल आने पर वो काफ़ी घबरा गई थी। श्रद्धा ने उसे शांत करवाते हुए कहा, अरे बस करो, और हर टाइम टेंशन लेनी ज़रूरी नहीं होती है, मैंने तुम्हें ये कहने के लिए कॉल किया था कि आंटी को होश आ गया है और वो काफ़ी बेहतर भी महसूस कर रही हैं, बस वो तुम्हें काफ़ी मिस कर रही है और तुमसे मिलना चाहती है, मुझे ये बताओ कि तुम हॉस्पिटल कब आ रही हो, बाय द वे मैं तुमसे पूछ क्यों रही हूँ, तुम अभी इसी वक्त हॉस्पिटल आ जाओ। श्रद्धा ने चाहत की बात सुने बिना ही उसे सीधे सीधे ऑर्डर दे दिया, ठीक है मैं अभी कुछ देर में पहुंचती हूँ, तुम प्लीज़ मम्मा का ध्यान रखना, कहकर चाहत ने कॉल कट कर दिया। उसके चेहरे पर राहत के भाव थे कि अब निशा को होश आ गया है, साथ ही वो उससे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड भी हो रही थी। फाइनली पूरे 3 दिन बाद मैं अपनी मम्मा से बात कर पाऊंगी, चाहत ने खुद से कहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसने खुद से कहा, मुझे हॉस्पिटल जाने से पहले आहान की परमिशन लेनी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह वो मुझसे नाराज़ हो जाए। नहीं नहीं, मैं मम्मा के मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकती। चाहत आहान को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो बिस्तर से उठी। पहले उसे लगा आहान बाथरूम में है, तो वो बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली, आहान आप अंदर हैं क्या? अंदर से किसी का कोई जवाब नहीं आया। चाहत ने हैंडल घुमाई तो दरवाज़ा भी खुल गया था। यहाँ भी नहीं है, फिर इतनी सुबह कहाँ गए होंगे? ज़रूर मॉर्निंग वॉक पर होंगे, चाहत ने अंदाज़ा लगाते हुए कहा। फिर वो नीचे आई तो उसे लिविंग रूम में कुछ स्टाफ सफाई करते दिखे। वहाँ उस घर में चाहत की इमेज कुछ खास अच्छी नहीं थी। 2 रात पहले आहान और चाहत के बीच जो भी हुआ था उसके बारे में उन सबको पता था। वो चाहत को गोल्ड डिगर समझते थे, जो पैसों के लिए एक अमीर आदमी के साथ सोकर उसका गुस्सा शांत कर रही है। चाहत को देखते ही वो सब लोग मुँह बनाते हुए अपने अपने काम पर लग गए। चाहत ने उन सब के एक्सप्रेशंस को इग्नोर किया और उनमें से एक के पास जाकर पूछा, आहान कहाँ गए हैं? ये तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा ना मैडम, वो अपना ज़्यादातर टाइम आपके साथ ही बिताते हैं, अब इतनी सुबह वो अचानक कहाँ चले गए उसके बारे में आपको बताया ही होगा ना, दोनों साथ ही थे ना बेडरूम में, उसे औरत ने तुनकते हुए जवाब दिया। बातों ही बातों में वो चाहत को ताना मार रही थी। उसका जवाब सुनकर चाहत को गुस्सा आ रहा था। पहले ही आहान की वजह से वो अपनी मम्मा से नहीं मिल पा रही थी। ऊपर से वो औरत भी उससे काफी एटीट्यूड में बात कर रही थी। चाहत ने उसे सख्त लहजे में कहा, देखिए मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी कह देंगी। मुझे मेरी मम्मा से मिलने जाना है, उसके लिए चाहत बोलते हुए रुक गई। वो उन लोगों के सामने ये नहीं कह सकती थी कि आहान की परमिशन की जरूरत थी। उसने बात बदलते हुए कहा, मुझे बस आहान से बात करनी है, आप मुझे बता देंगी तो हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर आपने सुना होता तो यहाँ बहस करने के बजाय आप आहान सर से कॉल पर बात कर रही होती। मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं और किसी को बताकर भी नहीं जाते हैं। अब प्लीज मेरा काम डिस्टर्ब मत कीजिए और साइड हट जाइए। उस औरत ने काफी रूखे तरीके से जवाब दिया और फिर वहां की सफाई करने में लग गई। चाहत ने उसे कुछ नहीं कहा और साइड हो गई। उसने आहान को कॉल करने की कोशिश की लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। आहान इस वक्त गाड़ी में था, वो जल्द से जल्द ड्राइव करके ओबेरॉय मेंशन पहुंचना चाहता था। आयुष की तबीयत खराब होने का सुनकर वो काफी घबरा गया था। उसे आयुष की हेल्थ कंडीशन के बारे में पहले नहीं पता था। जैसे ही आहान ओबेरॉय मेंशन पहुंचा वो दौड़कर अंदर जाने लगा। तभी उसकी नजर बाहर गार्डन में रखी टेबल पर गई। आयुष उसी के आने का इंतजार कर रहा था। आहान तेज कदमे से चलकर आयुष के पास गया। उसने देखा आयुष का चेहरा उतरा हुआ था और उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। आहान को देखते ही आयुष उसके गले लग गया और धीरे से बोला, प्लीज भाई मुझे बचा लीजिए वरना वो सब मुझे मार देंगे। तुम किसकी बात कर रहे हो आयुष, तुम्हें कौन मार देगा, आहान ने हैरानी से पूछा और फिर वो आयुष से अलग हो गया। आयुष किसी तरह का ट्रीटमेंट नहीं ले रहा था, इसीलिए उसकी सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही थी। उसने इस बारे में किसी को बताया भी नहीं था। आहान ने नोटिस किया आयुष काफी डरा हुआ था और आहान का हाथ कसकर पकड़ रखा था।
आहान समझ गया था कि ऐसी सिचुएशन में आयुष उसे कुछ नहीं बता पाएगा। उसने हाउस हेल्पिंग स्टाफ की तरफ देखा तो उसने जवाब में कहा, हम खुद नहीं जानते सर, थोड़ी देर पहले ही आयुष सर घर पर आए थे, घर पर किसी को ना देखकर अपने कमरे में चले गए, फिर अचानक हमें इनके चिल्लाने की आवाज़ आई, कब से कुछ भी बड़बड़ाए जा रहे हैं, वो बेड मुझे मार देगा, यहाँ फूल मेरा दम घोट रहे हैं, ये घास मेरे पैरों को पकड़कर खींच रही है, इन्हें ये लगता है कि आसपास की सभी चीज़ें इनकी जान ले लेगी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पागल। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि आहान ने गुस्से में उस आदमी का कॉलर पकड़ा और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को पागल कहने की। इससे पहले कि आहान गुस्से में उस आदमी की जान लेता, आयुष जोर से चिल्लाकर बोला, प्लीज मुझे बचा लीजिए भाई। आयुष की आवाज़ सुनकर आहान को होश आया और वो उस आदमी को वहीं पर छोड़कर आयुष के पास गया। आयुष की हालत देखकर आहान समझ गया था कि वो हेल्यूसिनेट कर रहा था। आहान तो पहले से ही अपने गुस्से की बीमारी से जूझ रहा था, लेकिन आज उसे अपने भाई की बीमारी के बारे में पता चला। वो भी उसी की तरह किसी और मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहा था। ये देखकर आहान उस पर दया भी आ रही थी और साथ ही विजय ओबेरॉय पर गुस्सा भी। कहीं ना कहीं उसे भी समझ आ रहा था कि क्यों विजय ओबेरॉय ने कुछ साल पहले आयुष को उन सबसे दूर भेज दिया और तबीयत का बहाना बनाकर बात करने से मना कर दिया। जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आहान ने आयुष के दोनों कंधों पर हाथ रखकर कहा और फिर उसे अपने साथ तनु के पास ले जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ आहान को गए हुए काफी टाइम हो गया था और वो कॉल भी नहीं उठा रहा था। श्रद्धा इस बीच चाहत को 2 से 3 बार कॉल कर चुकी थी, तो चाहत ने बिना आहान के परमिशन लिए अपनी मॉम से मिलने जाने का डिसीजन लिया और वो चली भी गई।